फिर अगला टॉपिक देखते हैं, इश्क एक आफत है। ये इश्क वही है जिसको कल इश्क भी कहते थे, माशका भी कहते थे, प्यार मोहब्बत कहते थे, आज इसको लव कह लीजिए या इससे मिलता जुलता कोई भी लफ्ज़ कह लीजिए। लेकिन इश्क क्या है? इश्क के मजाजी, इश्क के हकीकी क्या था? इश्क तो बोला ही नहीं गया, वो तो वही चीज़ थी जिससे आज हमने बात शुरू की और पिछली पूरी की थी कि हकीकी मोहब्बत वो अल्लाह से है। लेकिन इश्क के मजाजी अल्लाह के माँ सिवा से मोहब्बत है, इससे दूर रहिए। ये वो आग है कि लगाए ना लगे, बुझाए ना बुझे। वो मुसलमान खुश नसीब है जो शोरा के इश्क आहो बुका नाला नाला हाय फराक, यानी जुदाई के गाने सैड सॉन्ग और हिजरो वसाल के शिकवों से महफूज है। ये चीजें दिल को खाली कर देती हैं। अच्छा आप कहेंगे हमने कभी कौन सी सुनी ऐसी चीजें, हम किस शायर से ये इश्किया और गम और दुखों वाला कलाम सुन रहे हैं? तो ये गाने क्या हैं? आज भी इतना कुरान पढ़ने और पढ़ाने के बावजूद आप कोई गाने का बोल सुन के तो देखे जो कभी पिछली जिंदगी में आपने सुना हो। एकदम दिल में एक लहर आएगी और एक जाएगी, मान के देखिए। इंग्लिश बोलने वालों को इंग्लिश के गाने समझ आएंगे, उर्दू पंजाबी वालों को उर्दू पंजाबी के गाने समझ आएंगे। तो जिंदगी में अपने आप को हमेशा ऐसी मेलोडियस चीजों से, ऐसी रोमानवी चीजों से अलग रखिए, दूर रखिए, वरना यही तो मसले हैं। आप देखिए कितने यंग बच्चे हैं, वो क्यों कुरान की तरफ नहीं आते? इसलिए कि गाने नहीं छुटते। और गानों में क्या निरा इश्क की तो है, रंग फर्क होगा बात फर्क होगी लेकिन है वो इश्क। अल्लाह ताला फरमाते हैं अफराई तल्लसी, क्या तुमने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया? इसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया, इसकी निगाह पर पर्दा डाल दिया और इसके कान और दिल पर ठप्पा लगा दिया। यानी ये जो ख्वाहिश नफ्स का बुत पूजा जाता है वो भी तो गैर खुदाई है। शायर कहता है मैं ही तो वो हूं जिसकी निगाह ने मौत को दावत दी, मैं ही मौत का जिम्मेदार हूं और कत्ल का जरिया भी हूं। यानी मुझे जो हैरत और हसरत और यास है मैं इसका मुस्तहिक हूं कि जो कुछ मेरे साथ हुआ इसका सबब आजम मैं ही हूं, यानी जो मेरे साथ हो रहा है उसकी वजह मैं खुद हूं। एक और उंदलसी शायर यानी टर्किश शायर है, कहता है कि जो अपने इश्क कसरते दीवानगी शौक और वारफ्तगी पर फख्र करते हुए कहता है मुझसे पहले लोगों ने फराक के नाले पढ़े, जिंदों और मुर्दों को इनके नालों ने बेचैन कर दिया। नाले क्या होते हैं? रोना धोना, गम दुख तकलीफ। जहां तक मेरी बात है तो अपने बारे में कहता है इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई दर्द ला दवा पाया। अल्लाह अकबर, यानी पहले मोहब्बत की जाती है फिर उसको जिंदगी का हुसन समझा जाता है और उसके बाद फिर उसी की दवा ढूंढने लगते हैं और फिर कहते हैं इसकी तो कोई दवा नहीं है। हालांकि इनके पहलू में जो दिल था अगर वो तकवा जिक्र रूहानियत और रब्बानियत से भरा होता तो हक तक पहुंचता, सही रास्ते पर चलता। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना अगर शैतान तुम्हें कचोखे लगाए तो अल्लाह की पनाह मांगो। आज भी अगर दिलों से गाने बजाने और झूठी शायरी की मोहब्बत ना निकले तो कसरत से पढ़ा करें कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। नमाजों में भी ये दुआ मांगी जा सकती है, अल्लाह के नबी से मिलती है जो दुआ इस्तफ्ताह है उसके करीब ये दुआ भी पढ़ी जाती है कि अल्लाह मुझे शैतान की फूक से उसकी थूक से और उसके कचोकों से पनाह दे दे। जो लोग तकवा वाले हैं इन्हें जब शैतान कचोके लगाता है तो वो नसीहत हासिल करते और साहिबे बसीरत हो जाते हैं। यानी एक सच्चा टेस्ट कि आप कितने अल्लाह वाले हैं वो क्या है, जहां कोई फिक्शन आएगा, जहां कोई गंदगी, चाहे वो किसी जगह शादी से पहले की कोई रात है, हंसी मजाक है, थक्कम पेल है, कोई बेतकल्लफ दोस्तों की आप महफिल में हैं, कहीं शौहर बीवी अकेले हैं, जरा सा पांव फिसलने लगे, कभी नफ्स की किसी रगबत पे, कभी चलो कोई बात नहीं फिर क्या हुआ, वीकेंड है, खुशी है, हम बाहर आए हैं, जो भी है, एकदम वो कॉन्शियस होते हैं, कहते ना ना ना, एक लम्हे का ये खुशी लेना कहीं मेरे रब को मुझसे नाराज ना कर दे। और जो बहक जाते हैं तो मान लीजिए कि शैतान के हाथों में तरने वाला हो गए। अल्लाह हमें ये साहिबे बसीरत कर दे। अब इसका इलाज इब्ने कय्यम रहमहुल्लाह ने क्या दिया है, इसके लिए दवाए शाफियों काफी तजवीज की। इनकी किताब का नाम है अद्दाव व दवा या अल जवाबुल काफी लिमन साला अन दवा अशाफी, यानी मुख्तसिर सा हम नाम लेते हैं लेकिन पूरा नाम किताब का यही है। तो क्या पता चला कि दिल की बीमारियों का इलाज क्या है कि एक बंदा अपने आप को इन सारी चीजों से अलग रखे। अब सवाल पैदा होता है कि इश्क मिजाजी होता क्यों है, अल्लाह से मोहब्बत जो थी वो बंदों से क्यों होने लगती है। तो उसके कई असबाब है, मसलन दिल महबूब हकीकी यानी अल्लाह ताला के जिक्र शुक्र और इबादत से खाली हो, बहुत बड़ी वजह है। खाली घर में तो कहते हैं ना जिन्नात आ जाते हैं, शैतीन आ जाते हैं। इसी तरह याद रखिए, दिल का बर्तन जब अल्लाह की मोहब्बत से खाली होता है तो उसके बाद वहां गैरों की मोहब्बत आती है और खुद ही दिल भी करता है। और दूसरी बहुत बड़ी वजह बदनिगाही है। पहले तो कोई लड़का किसी लड़की को ताकता था और उसके पीछे जाता था और उसके घर की दीवार पे बैठता था, आज बदनिगाही क्या मुश्किल है। आज आप प्रोफाइल पिक्चर्स पे देख लीजिए, एक से एक हसीन परी दिखेगी, गुलकारें अदाकारें आर्टिस्ट मॉडल्स, उनका तो काम ही ये है कि उन्होंने लोगों को खूबसूरत बन के दिखाना है। तो जितना कोई लड़का किसी लड़की के हुस्न को देखेगा और इसी तरह लड़की लड़के को देखेगी और जवान जवान और बूढ़ा बुढ़ी को देखेगा, दिल में जज्बात उभरेंगे और इससे फिर दिल रंजो गम का शिकार होता है। याद रखिए, अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत गम देती है। कई जायज मोहब्बतें, मसा आपको अपने इकलौते बेटे से प्यार है, मत कीजिए, इतना गम मिलेगा। आपकी इकलौती बेटी है, बड़ा प्यार है, गम मिलेगा। बास खवातीन अपने शोहरों को दिल में बिठा के रखती हैं, गम मिल जाता है। जो बंदा आपकी नजरों में वहां पहुंच जाए जहां अल्लाह को होना है, अल्लाह उसको निकाल फेंकता है। ऐसे ही जैसे आपके घर पे कोई कब्जा कर ले तो फिर आप बाय हुक और बाय क्रुक उसको निकालेंगी ना, तो अल्लाह ताला बास दफा इतने सदमों में डालता है, दिल हैरान होता है, अल्लाह ये क्यों हो गया, एक ही तो बच्चा था, 6 बहनें थी, इतना था। अल्लाह कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल, अल्लाह ईमान वालों के दिलों के अंदर जो डालता है ना जज्बे, वो बड़े खूबसूरत होते हैं। इसलिए इन चीजों को अपनी जिंदगी में रखना चाहिए। तो फिर क्या हमने इसमें अभी तक देखा है कि हर चीज से दिल को खाली करे, फिर आपको अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत मिलेगी। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं, यगुद्दु मिन अबसारिहिम, कह दो ईमान वालों से कि अपनी निगाहें झुकाओ और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। एक अमल कर ले अगर मर्द लड़के बेटे, और उनको सिखाइए, घर में बहन के सामने निगाह झुकी हो, माँ के सामने नजर ना उठे, कल बाहर किसी के सामने नहीं उठेगी। ऐसी हया भरा लड़का जब अपनी बीवी घर लेकर आएगा तो उसकी खुशी का सामान होगा। नजरें तो पहले ही बाहर गई, जज्बे तो दिल में कहीं और इधर उधर पूरे कर चुके, फिर जब सच्चे रिश्ते कायम होते हैं तो वो खुशी नहीं मिलती। इसीलिए ईमान वाले से अच्छा शोहर कोई नहीं और ईमान वाली बच्ची से अच्छी कोई बीवी नहीं किसी की बन सकती। तो अल्लाह ताला कहते हैं अपनी निगाहों को झुकाओ और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। सूरत नूर की आयत नंबर 30 है। नजरे बद इबलीस के तीरों में से एक तीर है। शायर कहता है जब तुम अपनी आंखों से हर चीज को देखोगे तो मनाजर तुम्हें थका देंगे, और वो देखोगे जिसके कामिल पर कादिर हो सकते हो ना नाकिस पर सबर आएगा। मतलब ये है कि हर चीज देखने की नहीं होती, थक जाएंगी आपकी निगाहें। फिर तीसरी वजह बदनजरी के बाद क्या है, इबादतों बंदगी और जिक्र दुआ और नवाफिल में कोताही। और अल्लाह ने तो कह दी 21वें पारे की पहली आयत देख लीजिए, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फख्शाई वल मुनकर, नमाज फुखश बातों और मुनकर से रोकती है। आज आप देखिए दिन ब दिन मुनकर बढ़ता गया ना। कभी आप अपनी जवानियां याद कीजिए, अभी आप 20-22 साल के हुए, टीवी पे 2-4 घंटे का एक सेशन था, उसी के अंदर राग रंग भी था, उसी में इकरा कायदा भी था, उसी में 1 घंटे का ड्रामा भी था, उसमें आधे घंटे की खबरें भी थी, और इची बिची करके रात 10-11 बजे सब बंद। अब सो जाओ, अब जो मर्जी करे, खाली डब्बा बजाएं, उसका टेबल बनाए, टीवी ने इतना ही काम करना था। हमारी आंखों के सामने VCR आए, हम अक्सर सोचते थे और छोटे छोटे जहन होते थे, भाई क्या फर्क है अब टीवी में और VCR में, तो कहते थे टीवी तो वक्त पे चलता है, VCR जब मर्जी चला लो, सुबह में चला लो शाम में। और वो दिन और आज का कोई दिन देखे, घर में 4 साल के बच्चे का भी टीवी उसके हाथ में है। 4 तो मैंने डरते हुए कहा, मैंने तो 2 साल के बच्चे को फोन पे उंगलियों से यूट्यूब खोलते हुए देखा। आप क्या कहते हैं, यूट्यूब क्या है ये सिनेमा छोटा सा? अब आपका मिजाज है कुरान सुनते हैं तो कुरान खोल लेते हैं, आप इसमें गंदगी देखिए तो वो वही एक छोटा टीवी बन के आपके घरों में सिनेमा आ चुका है। बच्चा सबसे पहले जिस आईकॉन को फोन से या आईपैड से खोलता है वो यूट्यूब है आज के दौर का। उसको नाचती फुदकती तस्वीरें अच्छी लगती हैं। अब आप किसको रोके, आप कौन जाए सनमो में? आप माए जितना मर्जी के मेरे बच्चे ने तो कभी सनमे का रुख नहीं किया, वो बेवकूफ है वहां जाकर 3 घंटे जाया करे। जहां पता नहीं गर्मी सर्दी क्या कौन उसको देखना ले, वो अपने घर अपने कमरे में अपने बेडरूम में देखेगा, उसको क्या जरूरत है लोगों में जाने की। तो अब जितना फिक्शन बढ़ा, जितना फोहश बढ़ा, ए बातें कमजोर, नवाफिल तो अब कोई पढ़ ही ले तो मैं कहती हूँ वलीउल्लाह बन जाए, सुन्नते तो वैसे ही कह दिया अलग है, फिर इबादत और बंदगी जिक्र, इवन इबादत के दौरान दिल नहीं लगता अल्लाह के साथ, रमजान की नमाजें भी हम सर से टालते हैं। बीमारी इश्क का इलाज क्या है? अगला सवाल लिखिए। बीमारी इश्क का इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता? कैसे? अल्लाह ताला फरमाते, इसी तरह हमने इससे बुराई और फुहशा को दूर कर दिया या कर दे, क्योंकि वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने इलाज किया, उनको गंदगी से दूर किया। तो तदबीर क्या है? नंबर एक, ये अपने जवान बच्चों बच्चियों के साथ भी बैठकर शेयर करें, खुद भी पढ़ें। अगर किसी के शौहर को कोई ऐसी गंदी चीज़ों देखने की आदत है उनके साथ शेयर करें। ये नहीं कि आप बैठें पढ़ें सुने आपके लिए ये बातें आ गई, आप नहीं, अपने ऊपर लेके बात करें। दूसरे को चिढ़ाएंगे तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आकर कुछ भी इस तरह की चीजें आपके सामने रखेगा। तो टॉपिक क्या है कि आप लोगों से कैसे गंदी बातें छुड़ाएं। पहली बात, अल्लाह की चौखट पर बंदा अपने आप को गिरा दे, इसी मौला से शिफा और आफियत का तालिब हो। आप मैं अपने बच्चों, अपनी नस्लों और अपने इर्द गिर्द वालों को इन गंदी चीजों से दूर देखना चाहते हैं, रब के आगे झुक जाइए। के अल्लाह फने मल मौला व ने मन नसीर, अल्लाह तुझसे ही मांगते, अल्लाह तू इनके दिल बदल दे, अल्लाह तू इनके हालात बदल दे, अल्लाह तू इनका नसीब बदल दे। दूसरी बात है गस्से बसर कीजिए, गस्से बसर अपना भी और बच्चों का भी। देखिए जवान नहीं माना आज के दौर में, आज तो बूढ़ों के रोमांस चलते हैं, आप तो उनके इश्क चलते हैं। नजरें झुकाइए, कोई औरत किसी मर्द को बिला वजह ना देखे, कोई मर्द किसी औरत को बिला वजह ना देखे। जरूरत भी पड़े तो साइड पे बात कीजिए, आंखों में आंखें डालना कोई जरूरत की बात नहीं है। जब गसे बसर होगी तो शर्मगाह की हिफाजत तो खुद ही हो गई, और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अल्लाह ताला तो कुरान में फरमा दिया, सूरत नूर आयत 24 में, इसी तरह से यार 30 आयत है, वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला ने ये बात सूरत मोमिनून में भी बता दी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जिसमें दिल अटका हो, इसके घर दर और दरो दीवार कर शहर को छोड़ दे, इसका जिक्र ना करे। यानी आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज में, कोई ऐसी इल्लत में पड़ गया कोई बच्चा, और अब आप लाख के वो उस लड़की की जान नहीं छोड़ता, वो लड़का नहीं छोड़ती, चले जाइए वक्ती तौर पे 2 साल के लिए कहीं मूव हो जाए, क्योंकि जिस चीज को आप रोज देखेंगे उसकी इश्तहा बढ़ेगी। दूर जाने से दिल भी दूर हो जाते हैं। आप कहेंगे आजकल दूरी क्या, ये देखे नेट हाथ में, फोन हाथ में, टेक्सटिंग, कुछ दिन तो खैर के गुजरेंगे ना। पहले तो कोशिश कीजिए कि मामले को सही हिसाब से देख ही लीजिए, लेकिन बहरहाल जितना करीब रहेंगे, और अगर एक घर में ही को मोहब्बत नामा चल रहा है तो फिर तो आप रात को भी नहीं आराम से सो सकते। और ये अपने लिए भी कीजिए, कई बच्चियां माशाल्लाह जो कुरान से जुड़ती हैं फिर आके रोती हैं, पिछली जिंदगी में ये था, कॉलेज में ये था, फुलां पसंद आ गया, मैं फुलां को पसंद आ गया, अब क्या करें? बेटा छोड़ दीजिए, और अल्लाह की रहमत है कि फिर अल्लाह जहां कुरान बढ़ता जाता है वहां हर गलत चीज निकलती है। फिर अगला काम ये कीजिए कि आमाले सालेह में लग जाइए। ये वो काम है जो खैर के कामों में सबकत करते थे और खुशी और गमी में हमें पुकारते थे। यानी अल्लाह ने उन नबियों का जिक्र किया, खास तौर पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम वगैरह के तस्करों में, सूरत अंबिया में भी इस तरह की बात आती है कि खैर के कामों में लगिए। आपको अपने अंदर कोई ऐसा मिलान दिखता है, आप अपने अंदर कोई ऐसी अर्ज फील करती हैं, या आपके बच्चों में, भाग के कामों में लगाए, अपने आप को फारिग ना छोड़े, बेकार चीजें तोड़ दें, फेंक दें, घर में रखे ही ना वो चीजें कि जिसके बाद बार बार आप खुद से किए हुए अहद और वादे तोड़ते हैं। फिर इसी तरह शरीयत के मुताबिक शादी कर ले। माँ ताब अलकुम, जब जवानी की उम्र अभी शुरू हो, लड़के को फील हो रहा है कि मुझे शादी की तलब है, माँ बाप के आगे सामने बात रख दे कि मेरी शादी कीजिए, मुनासिब लड़की देख लें। अगर माँ बाप रुकावट है कि अभी तुम तो अपने कदमों पे नहीं खड़े हुए, अभी तो तुमने पढ़ा ही नहीं, तो किसी भी जगह किसी अच्छे दीनदार से कहिए कि मेरे लिए लड़की ढूंढिए, और वो शादी करके ले आए घर में कि अम्मा मैंने शादी कर ली। ऐसे ही बच्चे दीन बचाएंगे, क्योंकि आजकल तुम्हारे बड़े ही नहीं हमारे शादियां रिश्ते होने देते कि अभी तो ये नहीं तो अभी तो वो नहीं। आप कहेंगे अच्छा कोई लड़की ऐसा महसूस करे वो क्या करे, तो लड़की को भी पूरा हक है, बड़े बाहया तरीके से किसी भी तरीके से अपने माँ बाप तक पैगाम पहुंचा दे कि मुझे शादी की जरूरत है। अमूमन लड़कियों के अंदर ये जज्बात कम होते हैं, लेकिन अगर वाकई किसी बच्ची को गुनाह में पड़ने का डर है तो वो अपने माँ बाप से कह सकती है। और खानदान में जरूर कुछ ना कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं मसलियत पसंद के जो तरीके से भी बात करेंगे, और फिर दुआएं भी की जाए, अल्लाह से भी कहा जाए, और फिर रोजे रखिए, आप वो गंदी चीजें छोड़ दें जिसके बाद दिल में और भी हैजान पैदा हो। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जवानों या शबाब अल मोमिनून या शबाब अल मुस्लिमीन, ए जवानों के गिरोह, कई मुख्तलिफ अंदाज थे आपके यूथ से बात करने के, कहा तुम में जो शादी के लायक हो तो वो जरूर शादी करें। तब आप देखिए कि जहां शादी मुश्किल, जिना आसान, शादी 18 साल से पहले नहीं, वो भी कम से कम 25-24 साल तक जाते हुए देखिए 8-10 साल गुजर चुके होते हैं। जो हमारे कल्चर में अमूमन लड़कों की शादियों का वक्त है वो 25-26 साल रखा होता है। गवर्नमेंट कहती है चले आप 18 साल के, बस सोच लीजिए 18 साल के लड़के को देता कौन है और आती कौन है, और फिर अभी तो ये नहीं तो वो नहीं, तैयारियों में 2 साल हमें तो चाहिए, तो बताइए अगर गुनाह हो गया तो क्या करेंगे, अगर लड़के लड़की ने कोई हद पार कर ली तो क्या करेंगे। तो याद रखिए फिर माना आपने कि इश्क एक आफत है। यानी ये जितनी तवील बात हुई है इस सारों का खुलासा ले लीजिए कि हमने इससे क्या सीखा, कि बिला वजह अपने आप को किसी ऐसी बातल चीज में नहीं डालना। फिर आप देखिए कि हमने इश्क मजाजी के कुछ असबाब देखे हैं, जिसमें से पांच बड़े बड़े आपके सामने हैं। यानी अल्लाह के जिक्र से खाली दिल, इबादत और शुक्र से आरी दिल में ऐसी चीजें आती हैं, फिर इबादत और बंदगी और नमाजों नवाफिल में कोताही, कुरान सुन्नत से दूरी, नामहरम से हंसी मजाक, बेतकल्लुफ गुफ्तगू, तन्हाई में मेल मलाप, फोन जा इसी तरह के चिट चैट जो है उन पर बातचीत, टेक्सटिंग। फिर इस तरह देखिए मखलूत निज़ाम तालीम, को एजुकेशन, मखलूत तकारीब, मिक्स गैदरिंग्स, महफिलें, पार्टीज, हर वक्त तो ये, यानी गोया कि आप कह सकते हैं कि लड़के लड़कियों का आजादाना मेल जोल। आप कहते हैं कहाँ रोज शादियां होती हैं, कहाँ क्या है, आज के तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का अगर आप माहौल देख लें तो मोटे मोटे आंसू खून के निकलेंगे आपके आंखों से, पानी के नहीं निकलेंगे। और ये सिर्फ वेस्ट की बातें नहीं, उनका तो ये कल्चर, वो तो कल भी था आज भी है, उधर तो कुछ और भी जरा सी कोई तेजी आई होगी, वो तो पहले ही हदें पार करके थे। ये हमारे अपने मुसलमानों की बातें हैं, वहीं से सारे फसाने और मोहब्बत की कहानियां और दास्तानें शुरू होती हैं। तो ये जो हम जिस तरफ चल पड़े हैं ना, इसका अंजाम तबाही है। बड़े गैर महसूस तरीके से आज हमारे मुस्लिम पेरेंट्स भी आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों के रोमांस और इनके इश्क मोहब्बत को कबूल करते जा रहे हैं। पहले कह लीजिए कि एक्सपेक्टेड था और अब एक्सेप्टेड हो रहा है। और आज आप देख लीजिए माँ कहती कोई बात नहीं, उसी लड़की के साथ फिरा करो जिससे शादी करनी है। मेरी बेटी बड़ी नेक है, सिर्फ एक ही लड़के के साथ फिरती है। अब आप ऐसे माँ बाप की अकल पे क्या बात करें, शादी नहीं करनी, लेकिन बच्चे बच्चियों को इस तरह परेशान किया जाता है कि वो बेचारे जो हैं ना इधर के ना उधर के। फिर इसी तरह वालदैन का औलाद को गलत बातों पर तंबीह ना करना भी एक बहुत बड़ी वजह है, और औलाद को मॉडर्न होने के नाम पे मुकम्मल आजादी दी हुई है। फिर आप देखिए कि सवाल ये लिखिए कि इश्क के नुकसान क्या हैं। ये एक अलग अपनी जगह टॉपिक है, दिल का बिगाड़ एक सीरीज के अंदर, लेकिन चंद चीजें नुकसान की ले लीजिए। पहली बात ये है कि खानदान और खुद की बदनामी, ये अलग बात है कि अब ये बदनामी कम हो गई, लेकिन बाइज्जत घराने अभी भी इन चीजों को पसंद नहीं करते। हो सकता है अभी 8-10-20 साल तक ऐसा ही चले और बाद में फिर सब कहें कि जी कौन बचता है और हरज क्या है, और अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि हम खुद मुआविनीन बन जाए अपने बच्चों के इसमें। फिर इसी तरह आप देखिए कि जिल्लत और रुसवाई है, लोगों की नजरों से बंदा गिर जाता है। जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो तो लगे रहते हैं बेकार बेतुकी हरकतों में, दूसरे उनको देखकर कोई इज्जत तो नहीं उनकी करते। अमूमन आप देखिए ऐसी मशहूर खवातीन से लोग शादी नहीं करना चाहते, ये अलग बात है, सारा दिन उनके हुस्न से फायदा उठाते रहे। फिर इस तरह आप देखिए कि गुनाहों के बोझ तले टेंशन वाली जिंदगी होती है, और ये लफ्ज कहना तो मुझे नहीं चाहिए लेकिन मेरा फर्ज है कहने का, लव चाइल्ड पहले वेस्ट में था, अब हमारे मुल्कों में भी आ गया। जब हमने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे बना दिया और उसमें कोई कबाहत नहीं है कि शादीशुदा कपलों के बगैर भी लोग आपस में बैठे खुले मिले, तो फिर अगला लफ्ज क्या मुश्किल है। ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ शेयर करते हैं चंद साथी, और मुझसे कहते हैं कि आप इसको आगे बात करें, हमारे जरिए से बात पहुंचे। डॉक्टर्स हैं, यंग बच्चियां आती हैं, माए लेकर आती हैं, कुछ बच्चियां खुद आती हैं कि देखें इसको क्या मसला है, ऐसी है वैसी है, बाद में अल्ट्रासाउंड में पता चलता है बेबी है। ये मुस्लिम बच्चियों की बातें हैं, गैरों की तो बात ही नहीं है। अब वो कभी वाकई लव चाइल्ड होता है और वाकई कहीं कुछ और मसले होते हैं तो वो इसके बाद डिप्रेशन है, फिर वो अपने हाथ काटेंगी और एक दिन आएगा कि वो हो सकता है खुदकुशी की भी कोशिश कर लें। तो ये इश्क व मोहब्बत है, बेहतर नहीं कि दिल में जज्बा बाद में, पहले उनको उनके घर भेजिए जहां से कुछ मिल सकता है वहीं से पाने की कोशिश करनी है। फिर इस तरह आप देखिए बाज़ शादीशुदा जोड़ों में ऑपोजिट जेंडर से इश्क मोहब्बत शुरू होता है तो फिर ताल्लुकात में तनाव आता है। मर्द को शक पड़ जाए कि उसकी बीवी के ख्यालों में भी कोई दूसरा आ गया तो वो तो उसी दिन उसके साथ बात बिगाड़ देगा। बीवी को शक पड़ता है कि शौहर लेट आते हैं, किधर है, क्या है, बाद में पता चला कि कुछ समथिंग एक्स्ट्रा है तो देखिए लड़ाई का शुरू हो गया मामला। वो हो सकता है 2 साल बर्दाश्त करती रहे और उस दिन तलाक कह देगी लेने के लिए जिस दिन पता चलेगा उसने अब उस औरत से शादी ही कर ली। यानी जब तक इश्क मोहब्बत चला रहा था तो ये सहती रही और जिस दिन उसने शादी की तो कहती अब मैं दूसरी बीवी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो ये कहानियां नई नहीं है, हालांकि बड़ी मायूब बातें हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ ये कहानियां फैली हुई हैं। मैं जब बहुत लोगों में मिलती हूँ, घुलती हूँ, और जाहिर है कि काम ही ऐसा है, मशीनों में रहने वाले तो बड़े सिक्योर्ड होते हैं लेकिन इंसानों में रहने वालों को बाज दफा वो कुछ कहना सुनना पड़ता है कि इंसान सोचता नहीं। कुछ अर्सा पहले की बात है, किसी ऐसी जगह में थी, बड़े मॉड स्कॉट लोग थे, तो बाद में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ खवातीन थी तो शुरू हो गई। आप ऐसे सवाल जवाबी लाइट से मूड में हो रहे थे तो एक सिस्टर कहने लगी अब तो कोई मर्द ऐसा नहीं है ना जो शराब ना पीता हो। तो मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है, पता नहीं क्या कहा इन्होंने। इसी तरह से बात थोड़ी और भी भड़के खुल के उन्होंने कही, तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी जी, तो वो इतनी भोलेपन में, यानी वो वाकई किसी बुरी नीयत से नहीं कह रही थी, शी वॉज जस्ट लाइक कह लेंगे एक्सप्लेनिंग वट शी हैज सी या सॉ, उसने जो देखा वो होगा। कह रही नहीं अब तो सारे मर्द शराब पीते हैं, पार्टियों में आम पी जाती है और हर मर्द की दोस्ती होती है। तो मुझे हैरत हुई, अब वो इतना कॉमनली ले रहे हैं और शादियों में तो जी शराब तो चलती है। अब तो आप मुझे बताइए कि फिर इसके बाद अगले तोहफे भी तो आएंगे ना। फिर सर आप याद रखिए कि ऐसी चीजों में पढ़कर जब हदें पामाल होती है ना चेहरे का नूर चला जाता है, एक खूबसूरत मासूमियत और एक अच्छापन जो होता है वो निकल जाता है। फिर माँ बाप और खानदान की बात नाराजगी मोल लेनी पड़ती है, फकर और तंग दस्ती की जिंदगी बसर होती है और अल्लाह ताला की तरफ से वाकई रिस्क कम हो जाता है। ये उन गंदी चीजों में से कि जिसके बाद मर्दों के पैसे में कारोबार में बरकत नहीं रहती। फिर जरा मोमिनाना सिफात छिन जाती हैं, वो जो इबादुर्रहमान की सिफात थी और मोमिनून की खूबियां थी कि कैसे वो वैजा मर्रु बिल्लख भी मर्रु की रामा, ये सब छिन जाता है। अल्लाह ताला सूरह कसस आयत 50 में क्या फरमाते हैं, फ़इल्लम यस्तजीबु लक फ़अलमन्नमा यत्तबिउन अहवाअहुम, फिर अगर ये तुम्हारी बात कबूल ना करें तो जान लो कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं और इनसे ज्यादा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। बेशक अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। तो फिर लिखिए कि ये इश्क मोहब्बत भी ख्वाहिश परस्ती की बिगड़ी हुई शक्ल है। अब आखिर में ये भी देख लीजिए इसका कोई इलाज है, बिल्कुल है, हर बीमारी की दवा भी है, कोई ताला ऐसा नहीं अल्लाह ने बनाया जिसकी चाबी ना हो। तो इस बीमारी इश्क का इलाज क्या है, अल्लाह के आगे झुकिए, अपनी अल्लाह से मोहब्बत को शदीद कीजिए, मुराद के ताल्लुक बिल्लाह को मजबूत कीजिए। देखिए दीन के चार हिस्से हैं ना, ताल्लुक बिल्लाह पहली चीज है, अपनी आजजी को मानिए, या कनाबुदो या कनस्तईन पढ़िए, सोचिए समझिए, दिल में आए आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की मोहब्बत बढ़ाते जाएं। फिर दूसरी चीज इबादात हैं दीन में, तो इबादात में दवाम रखिए, नमाज नहीं छोड़नी, रोजा नहीं छोड़ना, नमाज की रूह कायम रखनी है, फिर कुरान पाक को समझ के पढ़ना है, जितना उस पर गौर व फिक्र करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दिल साफ होगा। फिर नवाफिल का अहतमाम कीजिए, नफिल नमाजें पढ़िए और इस तरह अपनी इबादात को बेहतर करते जाएं तो इसका एक लामुहाला सा असर पड़ता है कि दिल से गंदगी की और गंदी चीजों की मोहब्बत निकलती है। फिर तीसरा इसका इलाज क्या है कि अपने मामलात दुरुस्त कीजिए, मसलन माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करना, उनकी दुआएं लेंगे और माँ बाप की दुआएं बंदे को बहुत फायदा देती है, चाहे बुढ़ापे में जाकर ही आपको ये बात समझ आए। फिर सिला रहमी करना, आमाले सालह करना, जो शख्स अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला करता है वो सब रिश्तेदार उसके लिए दुआएं करेंगे और वो फिर उसके लिए अल्लाह की तरफ से गंदगियों से दूर होने का भी जरिया बनेगा और साथ ही साथ उसकी उम्र और उसके रिस्क में बरकत का भी जरिया होगा। और इसी तरह से फिर बचाव कीजिए कुछ चीज़ों से, क्या गुनाहों से इज्तनाब। शरीयत के मुताबिक वक्त पर शादी कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तीन बुराइयां हलाक करने वाली हैं और तीन नेकियां निजात देने वाली हैं। हलाक कर देने वाली बुराइयां क्या हैं? नंबर एक, बुखल, स्टिंजीनेस, जिसकी पैरवी की जाए, जरूरियात पे भी नहीं खर्च करना। फिर बड़ाई खोर होना, खुद को बड़ा कहना। तीन निजात देने वाली नेकियां कौन सी हैं? नंबर एक, खलवत और जलवत, यानी तन्हाई में या लोगों के बीच में अल्लाह ताला की खशियत इख्तियार करना। फिर फक्र व गिना में मियाना रवि रखना, यानी ये नहीं कि बहुत पैसा आ गया तो अब पाँव ही पसार लिए और हदों से निकल गए। और इसी तरह गजब और रजा में अदल, यानी गुस्से में हैं आप किसी से, नाराज हैं, या आप उससे बड़े राजी हैं, बात अदल की कीजिए। यानी कि बच्चा प्यारा है तो उसकी मोहब्बत में उसकी गलत साइड लेने लग गए, और कभी गुस्से में आकर किसी अच्छे को भी बुरा बना दिया और कहा तुमने तो कभी मेरे साथ अच्छा किया ही नहीं। इस सिलसिले सहीहा की रिवायत थी 2234। तो फिर क्या सीखा हमने? कि हमने ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है जो अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों से निकालें या कम करें, और उसके बाद फिर हमें वो इस चीज़ के साथ ले चले कि हम उससे अल्लाह ताला को नाराज़ कर दें।